Thank you. ที่เขาจะเข้าสนามที่เหมือนกันอย่างถ้าเหมือนกับแต่ที่ใจนี้จะได้ไปถึงที่มาแต่ละวันการที่การที่มันเกิดการที่การที่มันรักษามันมันจะเจ็บพอทำอินทรานี้ทำอินทรานี้พอก็ทำบุญยานทำอินทรานี้มีผู้สมัครที่ดีที่มันที่มีดีผู้ทำทำได้
Thank you.
भगवान की चरणों की सेवा। अहम को क्या कर सकता है, अहम भी होना चाहिए, कोई कारण नहीं उसमें। जब कर्म होता है क्यों, उसे प्यास बुझती है क्यों, आग जलाती है क्यों, उसका स्वभाव ही है। इसीलिए हम भी हमारा भी ऐसे ही पालन करते हैं, बिना उसके बिना हमारा यथार्थ स्वभाव ही हमारा ऐसा होता है। अहम भी होना चाहिए, कोई कारण नहीं उसमें हो। यदि हमारी भक्ति में ये कारण हुआ कि हमको पुत्र हो, धन हो, संसार हो, तो वो परम धर्म नहीं रह गया। इसलिए अहित भाव होना चाहिए। अब तक मिला व्यवधान भविष्य नगति से चित्त की प्रतियां सम्राट प्रभु के चरणों की तरफ भी चलते प्रवाहित होती है बिना किसी कारण, तब वो भाव आत्मा शब्द सिद्धति साधारण मार्ग में रहते हैं, जिसके द्वारा हमारा चित्त प्रसन्न हो, मैं प्रसन्न हूं, आत्मा प्रसन्न हो। इसका मूल तात्पर्य है जय आत्मा शब्द सिद्धति, तुम प्रसन्न हो तो क्या होगा, तब तो ये भक्ति नहीं है। इसलिए जय आत्मा शब्द सिद्धति जिसके द्वारा प्रभु प्रसन्न हो, यहां आत्मा माने उनकी प्रसन्नता से ही हमारी प्रसन्नता होगी। और केवल हमारी प्रसन्नता रहेगी तब तो ये हेतु हो गया। इसलिए भक्ति से ये शुद्ध भक्ति, इसलिए प्रभु के प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता होगी, तब तो ये परम धर्म हुआ। नहीं तो केवल मैं ही प्रसन्न रहा, प्रसन्नता वो परम धर्म नहीं हुआ। भक्ति कैसे होती है, उत्तम भक्ति अनुकूल्य ज्ञान का अध्यनात्मक अनुकूल्य कृष्णानुशील भक्ति उत्तम। जब तक इस चीज को हम लोग नहीं समझेंगे तब तक भक्ति नहीं होती। भक्ति का आभास या भक्ति का विरोधी भाव हो जाता है भक्ति के नाम। जैसे सोने को नहीं पहचानने वाला व्यक्ति रोल्ड गोल्ड को सोना समझ करके थक जाता है, वैसे ही भक्ति का ये लक्षण उन लोगों को समझना पड़ेगा। अन्य अधिराजता सुनना भक्ति के दो लक्षण बदलाए, एक स्वरूप लक्षण, एक तथा दो तथा लक्षण। ये संसारिक दो प्रकार के उदाहरण हैं और एक स्वरूपगत लक्षण होता है। स्वरूपगत लक्षण ये है अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम्, नयन करके नहीं, भगवान की तन से मन से वचन से और भावना से जो सेवा होती है अनुकूलता होकर उसको भक्ति कर। हम लोग के तीन ही कारण है, इंद्रियां है, मन है और ये शरीर है, तन मन वचन। इसके अतिरिक्त एक और भी चीज है, एक है भावना, मन से अतिक्रम, मन से भी टूट जाए वो है भावना, वो आत्मा की भावना है, शरीर की नहीं, मन की नहीं। जब हम अपनी इंद्रियों से, तन से, मन से, वचन से जितनी भी क्रियाएं करते हैं प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, उनकी प्रीति के लिए हो, और उसमें भी योग्य व्यक्ति जो इस विषय में अनुभवी है उनके अनुगत्य में होना चाहिए। अनुमाने अनुगत्य है और वो चीज कृष्ण को प्रीति लगनी चाहिए, उसे कृष्ण को प्रसन्न होना चाहिए हमारी गुरु क्रियाओं से, तथा वो उनके अनुकूल हो प्रतिकूल नहीं। तब ये भक्ति हुई किंतु उत्तमा कब होगी, उसमें सांसारिक कोई भी अभिलाषा नहीं रहेगी लौकिक, और ज्ञान परम योग तपस्या प्रथम अनुसार भय संयम ये सबसे भी ऊपर हो, उसके द्वारा अच्छा भी न रहे, तब ये जाकर के उत्तम आप अन्यथा नहीं। अब थोड़ा सा मर्थिन तिर करके इस चीज को समझा, जैसे अनुकूल किसको कहते हैं, कृष्ण को कष्ट देने की अभिलाषा से कुछ नहीं होनी चाहिए, कृष्ण के लिए अनुकूल हो और कृष्ण को अच्छा भी लगना चाहिए, किंतु कृष्ण को अच्छी लगती है वो चीज भक्ति नहीं होगी। जरूरी नहीं जब अच्छी लगने वाली चीज उनको भक्ति ही अनुकूल ही हो, जैसे चार मूर्ति के साथ भी कृष्ण युद्ध कर रहे हैं, अखाड़े में कर रहे हैं, ताल होकर के भीड़ एक दूसरे को सिर से टकरा करके पीछे हटा रहे हैं, आगे हटा रहे हैं, हाथों से हाथों को मिला रहे हैं, कृष्ण को बड़ा उत्साह हो रहा है, वाह आज वीर रस का स्वाद हो रहा है, तो किंतु यह अच्छा लगना कृष्ण को उत्साह होना यह भक्ति नहीं, क्योंकि चारों मूर्ति उनसे ज्ञान से मार डालने के लिए बोल रहा है। इस विषय पर ठीक रखना जरा शब्द का था, अरे बड़े शब्द बाकी आपने, आप बड़े शब्द बाकी हैं, झूठ तो कभी आपने जीवन में देखा भी नहीं बोला भी नहीं, तो जरा शब्द जो कृष्ण को ये ऐसा कर्म होता ना मार रहा है, तो कृष्ण के वो अच्छे लगने के लिए नहीं कर रहा, इसलिए ये भक्ति नहीं, ये प्रतिकूल हो गया। कान पकड़ रहे हैं, उनको मुखर में बांध रहे, लड़कियां निकला रहे हैं, बंदर चंचल बुद्धि का चोर ये क्या हुआ, कृष्ण भी अतृप्त है और उनको अपने स्तंभ से हटा करके बैठ गया, कृष्ण को बोला जो भैया ने हम तो दूध नहीं पिया, आप चली गई, तो ये दूध के लिए कृष्ण है या कृष्ण के लिए दूध है, जो सोता भी हमको लड़कियां दिखला रहे हैं, बेच दिखला रहे हैं, गर्जन का ध्यान कर रहे हैं, और कृष्ण रो रहे हैं, और जो सोता जैसे तो ये तो कृष्ण को कष्ट दे रहा है, ये भक्ति नहीं, नहीं ये भक्ति है, क्यों अंदर में अथाह अनंत प्रेम के बच्चा बिगड़ जाए, झूठ बोलने लग जाए, चोरी कर जाए, बचपन में ही सुधार करना चाहिए, इसलिए ये मालूम पड़ता है जैसे कृष्ण को बुला रहे हैं, किंतु नहीं, उनकी समस्त क्रियाएं कृष्ण के भलाई के लिए, कृष्ण के लिए, इसलिए अर्थात जगह इतना हम करने लगे उसमें इतने व्यस्त हो गए जो भगवान ही भूल गए, जन्माष्टमी का हम त्योहार मना रहे हैं, पेड़ों से पत्ते ले आ रहे हैं, उनको सजा रहे हैं, सब कुछ खूब कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, दे रहे हैं, कर रहे हैं, किंतु भगवान को एकदम संपूर्ण
ऐसा नहीं होना चाहिए।
जिसके लिए कर्म है उसी को भूल गए। कर्म में इतने आजकल यज्ञ की बातें खूब चल रही है, कलयुग में यज्ञ ही नहीं। यज्ञ है तो भगवत कथा रूपी यज्ञ, कर्म यज्ञ ज्ञान यज्ञ है नहीं, संभव नहीं। शुद्ध घी नहीं मिलेगा, शुद्ध ब्राह्मण नहीं मिलेंगे जो बिना दक्षिणा के यज्ञ कर रहे हैं। यजमान भी वैसा नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान भी नहीं हो सकता, तप भी नहीं हो सकता, एक बेड़ा बिना खाए रह नहीं सकते, ये भी संभव है। इसलिए इतना आडंबर नहीं होना चाहिए कि भगवान ही भूल जाए, उसमें लुप्त हो जाए भक्ति। और वो भक्ति होनी चाहिए भगवान पर, वो भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान और दूसरों के प्रति नहीं। पिता पितृ भक्ति ये उपलक्षण मात्र है, मातृभक्ति देशभक्ति ये उपलक्षण है। आज आपके पिता में दूसरे जन्म दूसरे हो कहां भी भक्त, आज भारतवर्ष में जन्म है भारतवर्ष के प्रति है। और वही जब विभाग हो गया तो एक बांग्लादेश हो गया, एक पाकिस्तान हो गया, एक भारतवर्ष, कहां ही आपकी भक्ति हुआ। कभी जन्म करके दूसरे देश में चले गए कहां रहे, इसलिए उपलक्षण के लिए कहा गया। कृष्ण के प्रति कृष्ण ही भगवान है, भगवान के प्रति भक्ति होने पर वो भक्त कहा जाता है, दूसरे देवता के लिए। हाँ, इसमें राम श्रीमद नारायण और ये भगवत तत्व आश्रय है, किंतु देवी देवता का देवी देवता लोग भक्त है भगवान। हनुमान जी गुरु है, शंकर जी गुरु है, पार्वती जी दुर्गा जी ये गुरु हैं, भगवत भक्ति की शिक्षा देती है। इसलिए भक्ति का संबंध केवल मात्र भगवान से है और वो भगवान कृष्ण संपूर्ण। यदि दूसरी जगह जाएगी तो भक्ति नहीं होगी, इस चीजों को समझना चाहिए। इसलिए भागवत में बतलाया गया सभी पुंसान और सभी पुंसान करो धर्मो जगो भक्ति कर दो जे अहे तुक्य अप्यर्विता जा भक्ति पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम कौन है, कृष्ण है, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। एते जांच करा पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। नमुद्धते अप्रगमसे तड़ितंबराय गुंजावतन परिपच्छल लसन खाय वन्नस्तये कौलमित्र विशांगे लक्ष्मासिये उद्पदे पशुपालंगजाय नंदनंदन के बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिका। इसमें भी कृष्ण के लिए इसलिए सर्वत्र ही भागवत का ये विचार है, ये भगवान ये कृष्ण है, उन्हीं के सब अवतार प्रकाश या अंश हैं और जितने देवता देवी जीव सब भगवान के नित्य दास। यह संबंध कभी दूर न हो तब तो ये अन्यथा भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए बतलाया यहां पर कि यदि धर्म सुनिश्चित पुंसा विश्वक्षेन कथा सुजर नोत्प्यागत यदि रति श्रमय वही क्यों। हम दिन भर सब कुछ करते हैं भगवान की कृपा, किंतु भगवान की कथाओं में रुचि नहीं हुई इन कथाओं को सुनने में, तो वो केवल परिश्रम ही परिश्रम हो गया है। यहां तक कि धर्मस्य ही अपवर्ग कोई भी ऐसा व्यक्ति ने कुछ ना कुछ जो भी कार्य करता है, धर्म से अर्थ लाभ या अर्थ धर्म अर्थ के लिए नहीं, अर्थ तो केवल जीवन निर्वाह के लिए मात्र है। अर्थ का की का उद्देश्य भोग से नहीं, भोग विलास नहीं, तो कष्ट हो जाए। अर्थ की इतनी जरूरत है जितना कि हमारा जीवन का निर्वाह, और नहीं तो हम उसी के जाल में पड़ करके मरेंगे। इस
निहजत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तिरपा सेवन नहीं जीवन न मुक्तो विचार।
यदि हमारा धर्म वैराग्य के लिए नहीं तो तामसों से वैराग्य नहीं, अथवा भगवान की कथाओं में रुचि यदि नहीं हुई अर्थ के लिए दिन रात उसी में लगे रहो ऐसा नहीं, बल्कि अर्थ से ध्यान और धर्म से ध्यान और संसार से वैराग्य और वैराग्य किसके लिए भगवान की सेवा करो तब तो ये ठीक होता है। एक आदमी 80 वर्ष का हो गया, इंद्रियां चल नहीं गई, आंख देख नहीं गई, दुर्बल शरीर हो गया, रोग से व्याकुल हो गया, बदलाव तो वो क्या करेगा, ये दूध हजम नहीं कर सकता, भोगों को भोग नहीं सकता, क्या करेगा वो, छोड़ना तो पड़ेगा ऐसे ही, इसे क्यों नहीं समय रहते हुए इसे छोड़ करके भगवान की तरफ में चित्त को लगाओ, ये भागवत सुनने का प्रार्थना है। हाँ ये भी देखना है सब चीजों को छोड़ करके भगवान में चित्त लगाएंगे, चाय तो छूटती नहीं, बड़ी सिगरेट इत्यादि छूटता नहीं, कथाओं में भी लोग आते हैं नशी तक नहीं छूटती, वो विश्वास में आसक्ति कैसे छोड़ सकेंगे, छोड़ सकते हैं यदि भगवान की कथाओं में रुचि यदि हो प्रभु छोड़, इसलिए भगवान की कथाओं में रुचि रहनी चाहिए, इसलिए कहते हैं तस्मात एकेन वर्षा भगवान शास्त्रकाल पति श्रोतव्य कीर्ति भेय पूज्य नित्य, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार इसमें लिया है। तस्मात एकेन वर्षा, इसलिए भाई विचार करके देखें, एकेन वर्षा एक मन को एकाग्र कर, शास्त्रकोण जागरूक के ध्यान अथवा विश्व ब्रह्मांड के जो मालिक हैं प्रभु हैं वो भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं, उन्हीं के विषय में सुनो, उन्हीं का कीर्तन करो, उनके नाम का ध्येय से उन्हीं का ध्यान करो, सब समय उनका एक के पूजा करने से सबकी पूजा हो जाएगी और सबकी पूजा करने से किसी की नहीं, एक साथ में सब सत्य सब साथ है सब जाए, इसलिए एक कृष्ण की पूजा करने से आप लोगों ने सुना होगा गणेश की और सब देवताओं पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं कि इसकी पूजा आगे हो, सब लोग कोई सिर पर चढ़ करके भागा, कोई उस पर चढ़ करके दौड़े अपने अपने वाहनों पर और गणेश जी रोने लगे जो मेरा चूहा पति चलेगा नहीं, मेरा भारत दिन पृथ्वी की परिक्रमा करो, पैसे करो और सबसे पीछे पड़े और पूजा पाने की किंतु लालसा प्रचुर है। नारद जी से भेंट हो गई, नारद जी के सामने रोने लगे, उन्होंने कहा अच्छा राम नाम लिख दो या कृष्ण नाम लिख दो, तीन बात परिक्रमा उसी का नाम विश्व ब्रह्मांड का परिक्रमा, बस उन्होंने राम नाम लिखे और उसकी तीन बार परिक्रमा कर दी और बैठ गए। वो कोई 6 महीने में, कोई 1 महीने में, कोई 10 दिन में, कोई 5 दिन में आए, किंतु यही निर्णय हुआ कि गणेश जी ने ही पृथ्वी की परिक्रमा की थी, उनकी परिक्रमा में सब कथाएं आएंगी जिसके द्वारा ये बताएंगे, इसलिए बिना संदेह के कृष्ण को भगवान मान करके उनकी पूजा करने से हमारा जीवन का सब कुछ करना उसी के द्वारा हो जाएगा और पृथक रूप में कुछ करने की आवश्यकता, इसलिए बुद्धिमान पुरुष ऐसा, इसलिए कहते हैं बस ऐसे संतों का संग किया जाए यदि भक्ति की जरूरत है, बिना संतों की कृपा से ये भक्ति भी नहीं होगी क्योंकि उनके हृदय ये भक्ति तो भगवत संगे न परिजाए थे सत्संग प्राप्त थे उन्हीं पूर्व जन्म संत कहते पूर्व पूर्व जन्मों की संत सुकृत संचय होने पर
से कतिक पुण्य प्रसादों का संग मिलता है। साधु संग से भक्ति, बिना साधु संग के इसलिए इन पर विचार करके भगवान का हम भजन करेंगे इसी रूप में सुख होंगे। उसमें एक नाम करने का जो फल है, विश्व ब्रह्मांड के जितने भी धर्म हैं करके उसके पासन के बराबर भी नहीं होगा। स्वर्ग सुख की बात क्या, अपवर्ग मोक्ष भी मोक्ष एक छलना है, ठगना है। मोक्ष के फेर में कभी मन पड़ेंगे और कभी भी जान बूझ करके भी अपने को ब्रह्म नहीं मानेंगे। जो दिन में 10 दशाएं होती हैं, 1 सेकंड में 10 दशाएं, वो ब्रह्म कैसे होगा? ब्रह्म का भास हो सकता है। इन चीजों को समझ करके हम लोग भगवान की भक्ति करने अग्रसर होंगे और आगे की कथा आप लोग पूछ सकते हैं। तो नहीं है जो मरा नहीं, वसूली से उनको उतार लिया और उनके चरणों में गिर करके क्षमा मांगा। वो कुछ असंतुष्ट नहीं हुए, किंतु उसी समय में जमराज के पास में गए और बोले, हमको किस अपराध में इस प्रकार का दंड भोगना पड़ा, आप बतलाइए। उन्होंने कहा कि तुम पूर्व जन्म में छोटा सा बच्चा था, जो उसमें तुम्हें होश नहीं था, उस समय तुम खेलते खेलते एक सीख से एक कीड़े के अंदर में घुसा दिया, इस पार से उस पार। वो मरा नहीं, किंतु उसको कष्ट हुआ। इसके बदले में आपको यह फल भोगना पड़ा, आप ही मरे नहीं, किंतु ये फल भोगना पड़ा। सब व्यक्तियों को अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हम समझते हैं कि इस जन्म में तो हमने कुछ किया नहीं, ऐसा फल क्यों हुआ था? ऐसा मत समझिए, बहुत ही न्यायी है जमराज की ये बात। तो प्रभु कैसे न्यायी है, उनके कर्मचारी लोग ऐसे हैं, ठीक भजन करके ये सब भोगते हैं। उन्होंने कहा, एक छोटी सी गलती के लिए आपने इतना मुझे अपराध दंड दिया, उस समय में ये मुझे होश भी नहीं था और आपने ऐसा किया। अच्छा देखिए,
आपका भी कोई शासन करने वाला नहीं, मैं आपको अभी संपात करता हूं और आप अभी पृथ्वी लोक में भ्रष्ट होकर के जाए, वहां पर जन्म ग्रहण करें, वो भी गरीब के घर में शूद्राणी के गर्भ से आप जन्म ग्रहण करें और तब समझिए जिसे जगत में कैसा दुख और सुख होता है, तब आप समझेंगे, तब फिर आप ऐसा निर्णय करने के लिए योग्य हो। अरे समझिए, इसलिए वो विदुर जी आए हैं यहां पांडु और धृतराष्ट्र के छोटे भाई बने। जब दुर्योधन बहुत अन्याय करने लगा, पांडवों को मारने के लिए चेष्टा करने लगा, कृष्ण के सुलानामा करने के लिए आने पर भी कृष्ण को भी कैद करना चाहा, तो विदुर जी धृतराष्ट्र से बोले, सांप को क्यों पाल रखा, सांप को पालना भी अच्छा है किंतु इस दुष्ट को पालना अच्छा नहीं है, विष वृक्ष को तत्काल ही काट देना चाहिए, अंग में कोई ऐसा भयंकर रोग हो जाए गैंगरिंग इत्यादि जो कि हाथ सड़ने पर वो भीतर भी सड़ सकता है, मर जाएंगे, तो हाथ को काट देना ही बुद्धिमानी का लक्षण है, इसलिए इसको तुम पुत्र के दायित्व से हटाओ, इसे घर से बाहर कर दो। सुनकर के बड़ा वो नाराज हुआ, क्रोधित हो गया, जो जिस पत्ता में खाता है उसी में छेद करता है, हमारे पिता का दिया हुआ तुम राज्य को करता है, उनका मंत्री बना हुआ है और मैं उनका पुत्र हूं, हमारे युद्ध में ऐसा करता है, पांडवों से मिला हुआ है। उन्होंने उसी समय में अपने धनुष अपनी पगड़ी सब कुछ वहीं पर छोड़ दिया और कहे अब तुम्हों का विनाश निकट में है, ये कर करके चले गए। घूमते घामते घामते भारतवर्ष के प्रत्येक तीर्थों में गए और जिस समय में द्वारका के पास में कौन सा क्षेत्र प्रभास में जब पहुंचे तब तक उनका ध्वंस हो चुका था, सब लोग मारे गए। उसी समय में उनसे भेंट हुई हमारे उद्धव जी से और उनसे पता लगा कि कृष्ण भी चले गए और सब बातें हुई। वहां से घूमते घामते फिर वो आए, उस समय में देखा युधिष्ठिर महाराज जी राजगद्दी पर बैठे हैं, हस्तिनापुर की गद्दी पर, धृतराष्ट्र उन्हीं के यहाँ है, भीम उनको रोटी का टुकड़ा देता है। आते ही हमारे युधिष्ठिर महाराज जी ने उनको प्रणाम किया, भवद्विधा भागवता तिथि भूता स्वयं प्रभो तीर्थान कुर्वन्ति तीर्थानि सांतस्थैर्यं ददाति। मैंने कहा जैसे आप ही जैसे महानुभाव तीर्थों में तीर्थत्व प्रदान करते हैं, नहीं तो तीर्थ तो मलिन हो चुके हैं, इसलिए आज बिना बुलाए हमारे घर में आए, आपका क्या जरूरत यहाँ आने का, साधु संतों को गृहस्थ भक्तों के यहाँ किस लिए जाते हैं, दया करने के लिए जाते हैं, कुछ तत्व ज्ञान देने के लिए जाते हैं, अपने उनकी रोटी की कोई जरूरत नहीं तो अभी उनके घर में जाते हैं, कुछ पानी पी लिया, कुछ उनसे बात किया, उनको भगवत गीता उपदेश देते हैं। इसलिए आप परम धर्मात्मा हैं, आप हमारे कल्याण के लिए हैं आए, आप कुछ दिन यहाँ पर ठहरिए। ठहर गए, रात में गंधारी और विदुर, गंधारी और धृतराष्ट्र जहाँ पर थे वहां पर गए, जाकर के कहा महाराज धृतराष्ट्र आप सचमुच में बिल्कुल लग गए, आपने सारा जीवन जो किया अन्याय किया उसका फल मिला, आपके वंश में आप कोई नहीं रहा, आज भीम को जिसको मारने के लिए आपके पुत्र और आपने इतनी चेष्टा की वो भीम के रोटी पर चुपके की भांति आपको दे जाता है, उसी पर पलते हैं, आपको लज्जा नहीं आती, अब किस लिए जीवित है, तुम्हें और क्या चाहिए, अब तुम इसे भयंकर क्या देखेगा जब तुम्हारे पुत्र सब मारे गए 101, तुम्हारे नाती मर गए, यहाँ तक कि पांडवों के नातियों को भी तुम लोगों ने मरवाया, सब कुछ खत्म कर दिया, और क्या देखना बाकी, अभी तुम्हें वैराग्य नहीं आता, कब तक भीम की रोटी पर पलोगे, मैं क्या करूं, मैं अंधा, जो सचमुच में तुम अंदर और बाहर दोनों में अंधकार हो, तुमको अभी तक बुद्धि अकल नहीं आई कि मुझे क्या करना चाहिए, अभी घर से निकलो। मैं कैसे निकलूं? अरे मैं तुम्हें निकालूंगा। बस उनको तैयार हो गए, गंधारी को भी साथ लिया, कुंती भी पीछे पीछे चली, राज्य का मोह का माया ममता सब छोड़ दिया, चल पड़े। जाते जाते हरिद्वार में पहुंचे और वहां पर रह करके हरिद्वार के निकट ऋषिकेश में, उसमें भयानक जंगल था, गंगा के किनारे जंगल में तपस्या करने लगे, भगवान की आराधना करने लगे। विदुर ने जैसा बतलाया, भगवान नाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। उस समय तो ये मंत्र नहीं था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि का प्रचलन था। उन्होंने जैसे हो भगवान का एक आराधना का मंत्र